हर रविवार को सुबह 10:30 से 11 बजे तक संकीर्तन रहता है, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होता है और 12 से 12:30 बजे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होता है। तो हम सबसे विनती करते हैं कि हर रविवार को इस समय में आए और इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम का लाभ उठाए। तो आज हमारे साथ प्रवचन देने के लिए उपस्थित है श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभु। श्रीवल्लभ प्रभु इन्होंने बीटेक नाम की इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की है, उसके पश्चात उन्होंने 4 साल तक जॉब भी किया और फिर इस्कॉन चौपाटी जो राधा गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पे वे पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी के रूप में सेवा देने लगे। उसके पश्चात कुछ सालों में वे गोवर्धन इको विलेज शिफ्ट हुए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अनेकों सेवाएं की है, उसमें से मुख्य रूप से वे एचआर का कार्यभार संभालते थे। अभी वे गेस्ट रिसेप्शन माने स्वागत विभाग जो है गोवर्धन इको विलेज का, उसका कार्यभार संभाल रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो अनेकों गांवों में जाके प्रचार भी करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि वे हमारे साथ प्रवचन देने के लिए उपस्थित है। तो पारंपरिक रूप में 3 बार हरि बोल बोलकर उनका हम स्वागत करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके कीर्तन में भाग लीजिए। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा श्री हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रविवार या सत्संग कार्यक्रम में। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही विशेष रखा गया है, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का हमें दर्शन करना चाहिए, या भगवान का दर्शन अगर करना है तो हमें क्या करना होगा। तो कई बार हम लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर में आना हमारे लिए एक आस्था का विषय है, लेकिन आजकल एंटरटेनमेंट का भी विषय बन गया है। कई लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो दर्शन कम फोटो सेल्फी ज्यादा निकालते हैं, तो हमने भी भगवान को एक प्रकार का सेलिब्रिटी बना दिया है। तो जब हम भगवान को सेलिब्रिटी बनाते हैं तो दर्शन नहीं कर पाते। सेलिब्रिटी में क्या होता है कि व्यक्ति केवल नाम के लिए होता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ हम फोटो निकाल रहे हैं तो हम फोटो निकालते तो है लेकिन महत्व तो अपना बनाते हैं और सेलिब्रिटी का कम हो जाता है। दिखाने के लिए देखो मैंने इसके साथ फोटो निकाला, मतलब मैं कितना महान हूं कि मेरी पहुंच इसके तक है। तो इस प्रकार से हमने भी भगवान को ऐसा ही बना दिया है। हम दर्शन करते हैं तो एक प्रकार का एक आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होता है कि चलो मैं धार्मिक हूं। हम कहीं और पिकनिक मनाने नहीं गए, हम लोग गोवर्धन इको विलेज आए हैं, धार्मिक स्थल पे आए हैं, और अपने आप को एक सांत्वना दे देते हैं कि देखो मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। लेकिन मानसिकता तो पिकनिक की ही होती है। लेकिन ये जो जगह है, हमने इस जगह का जो निर्माण किया है, इसका पर्पस यही है कि लोग यहाँ पर आए तो किसी टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से ना आए। ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति और उनकी उपासना करना। तो मंदिर का एक विशेष पर्पस होता है। आप में से कई लोग यहाँ पे भगवान का दर्शन करेंगे तो हर मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, उनका दर्शन करते हैं, लेकिन क्या सच में हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं? क्योंकि दर्शन ये शब्द जो है ये आंखों से नहीं होता, ये कानों से होता है। अभी आप में से कई लोगों ने दर्शन तो किया होगा लेकिन फिर भी आंखों से दिखने वाली चीजों से हमें कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जैसे उदाहरण के लिए हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और समझ लीजिए कि आपके पास जो मोबाइल है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ खराबी आ जाती है या ओपन ही नहीं हो रहा, तो आप उस मोबाइल को इतना महंगा खरीदा है तो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाएंगे, यार भाई क्या हो गया इस मोबाइल को। लेकिन वही मोबाइल आप किसी टेक्नीशियन के पास लेकर जाएंगे, रिपेयर वाले शॉप के पास, तो बोलेगा बस इतना सा बात, वो कुछ तो बटन दबा देगा और चालू हो जाएगा। तो सेम इंस्ट्रूमेंट है, जब आपके हाथों में होता है तो आपके लिए चिंता का कारण बन गया था, लेकिन वही मोबाइल जब किसी टेक्नीशियन के हाथ में आ गया तो उसके लिए चिंता का कारण नहीं था, वो उसे लिए केवल एक ट्रबल शूटिंग पार्ट था। तो अंतर क्या था दोनों में, दोनों व्यक्तियों में? वो ये था कि ज्ञान, उस फोन को देखने का नजरिया वो दर्शाता है कि व्यक्ति को लाभ देगा या तकलीफ देगा। तो उसी प्रकार से हम भी दर्शन तो करते हैं लेकिन फिर भी भगवान को देख नहीं पाते। तो देखना, अगर भगवान को अगर देखना है हमें सही मायने में, तो केवल आंखों से नहीं देख पाएंगे, उनके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए तभी हम उनको देख पाएंगे। तो इसके लिए आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। आप में से कई लोग यहां पर मंदिर में दर्शन करने आए तो मैं कुछ लोगों को पूछता हूं कि आपने मंदिर में दर्शन करने आए किन किन का दर्शन किया आपने? अगर ऐसा मैं पूछता हूं लोगों को तो लोग बोलते हैं कि हाँ कृष्ण है, बाजू में कोई लड़की है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, वो तो बोलेगा कि कोई है, कोई देवी होगी, और एक और बाजू में कौन है वो तो पता नहीं किसी को भी। तो हम दर्शन कर किसका रहे? तो इसी चीज को कहते हैं एंटरटेनमेंट या स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, बस एक देखने के लिए आ गए, बस हाँ कहाँ पे क्या है, कितना सुंदर बनाया है, फोटो निकाल लिया और अपने आप को तथाकथित धार्मिक बोल लिया। लेकिन जिनका हम दर्शन करने आए, जिस मंदिर में आए हैं, उस मंदिर में हम जिनका दर्शन करें उनका नाम क्या है, जिनकी जिन मूर्तियों का हम दर्शन कर रहे हैं वो कौन है, ये तो ज्ञात होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें पता करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपके जानकारी के बता दूं, हमारे गोवर्धन इको विलेज में दो प्रमुख मंदिर है। एक यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण, जिनका नाम है राधा वृंदावन बिहारी जी, और उनके बाजू में जो एक मूर्ति है व्हाइट कलर में, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, जो आज से 500 साल पहले इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति वहां पर है। और दूसरा मंदिर है जो आपके पीछे, इस मंदिर के बाजू में एक बड़ा सा मंदिर आपको रेड स्टोन का दिखेगा, तो वो है मदन मोहन जी का मंदिर, राधा मदन मोहन, तो उनका मंदिर है। तो ये जो जगह बनाई है हमने, ये एक प्रकार से छोटा सा वृंदावन का रिप्लिका बनाया है, मतलब प्रतिकृति बनाई है। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उन्हें वृंदावन जाने का अवसर मिलता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, किसी कारणवश वो वृंदावन तक नहीं जा पाते, तो वे यहां पर आकर उसी वृंदावन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं इस छोटे से रिप्लिका ऑफ वृंदावन में। तो हमने एक छोटा सा वृंदावन फॉरेस्ट बनाया है जो 50 एकड़ में फैला हुआ है, और इस वृंदावन फॉरेस्ट में वृंदावन के जो 7 गोस्वामी जी के मंदिर है वो वहां पर हमने बनाए हैं, आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। और हर एक मंदिर की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, वो जानना जरूरी होता है। तो मैं आपको पहले एक कथा बताऊंगा हमारे मदन मोहन जी के बारे में, राधा मदन मोहन जी। आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता ही होगी कथा, लेकिन जो लोग यहाँ पर विजिटिंग गेस्ट करके आए हैं उनके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो हम केवल हाथ जोड़ के कान पकड़ के प्रदक्षिणा मार कर निकल जाएंगे। लेकिन कौन है मदन मोहन जी, ये हमें जानना होगा। तो ये कथा शुरू होती है आज से 5000 साल पहले। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध करवाया, और उस युद्ध के द्वारा इस पृथ्वी पर के जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं सबको खत्म कर दिया। तो इस महाभारत के युद्ध में जो विनाश हुआ उससे कई लोग विचलित हुए, जिसमें से माता गांधारी बहुत विचलित थी। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मेरा कुरु वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार से आपका भी यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि संपूर्ण यदुओं का भी नाश हो गया। लेकिन सारे यदु नष्ट नहीं हुए, कुछ गिने चुने लोग यदुवंश के वो जीवित थे, और उसमें से भगवान श्री कृष्ण के पर पोते, जब वे छोटे से बालक थे, वो भी उस समय जीवित थे, जिनका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ ये भगवान श्री कृष्ण के पर पोते हैं। अभी कृष्ण के पर पोते मतलब आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हुए, उनका परिवार कितना बड़ा है? बस आपको एक जानकारी दे देता हूं, कैलकुलेशन करने के लिए आसान पड़ेगा इसलिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16108 रानियों से विवाह किया था। ये सुनते ही लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं इसमें आश्चर्य क्या बात है, इसलिए तो वो भगवान है जो ऐसा कर सकते हैं। वो भगवान है इसलिए 16108 रानियों से शादी कर सकते हैं और सबको सुखी भी रख सकते हैं। कोई लोग अपने इधर यहाँ पे कहावत है कि भारत में हर गली नुक्कड़ पे एक एक भगवान आपको मिलेगा। कोई कहेगा मेरा गुरु भगवान है, कोई कहेगा मेरे बाबा जी भगवान है, इत्यादि सबको भगवान बना देते हैं। लेकिन अगर भगवान जैसा कुछ कार्य तो करे, 16,108 स्त्रियों से शादी करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको शादी करके सुखी रखना ये बहुत बड़ी बात है। और इन 16,108 रानियों से हर रानी को 10 पुत्र थे और एक कन्या थी, तो हर एक रानी से 11 बच्चे थे। तो बताइए मुझे कृष्ण के कितने बच्चे हुए? लाखों के ऊपर नहीं? और सोचो, ये तो केवल उनके बच्चे थे, उनके बच्चों के कितने बच्चे रहेंगे, और उनके बच्चों के और बच्चे। तो ये तो कृष्ण का फैमिली था। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि एक बार नारद मुनि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए आए थे। तो हर रानी के लिए भगवान कृष्ण ने महल बनाया था, तो ऐसे 16,108 महल थे। और ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक रानी के साथ, दूसरे दिन दूसरे रानी के साथ, ऐसा करते करते 16,108 दिनों में 16,108 रानियों के साथ, तो ऐसा नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित कर लिया था, मतलब हमारी भाषा में डुप्लीकेट बन गए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 रूप में विस्तारित कर लिया था और हर रोज अपने अपने रानियों के साथ रहा करते थे। ये है उनकी भगवत्ता। लोग नाम रखते कि देखो तुम्हारा कृष्ण कैसा है, तो हमारे कृष्ण ऐसे भी है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो 16,108 रूपों में भगवान श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ गृहस्थ का पालन करते थे, गृहस्थ जीवन के। एक जगह पे नारद मुनि ने देखा कि एक महल में भगवान कृष्ण अपने रानी के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे महल में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने रानी के साथ क्या कहते उसको गेम खेल रहे, अपनी भाषा में लूडो, लूडो गेम खेल रहे वहां पे। किसी और रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण दूसरे महल में देखते कि वहां पे वो ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, गायों का दान कर रहे हैं। अन्य एक जगह पे देखा, वहां पे वो किसी अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी और महल में जाकर देखा, वहां पर अपने किसी बेटे का वो शादी और या विवाह आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसा नारद मुनि ने पूरे द्वारका में देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त है। तो सोचो कि 16,108 बच्चों की शादी करानी है, इतना ही नहीं उनके बर्थडे भी आपको ध्यान में रखने हैं, कितना बड़ा बात होगा। तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था प्रद्युम्न। रुक्मिणी देवी और कृष्ण का सबसे बड़ा बेटा था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का बेटा हुआ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का बेटा था वज्रनाभ। तो भगवान श्री कृष्ण का पर पोता वज्रनाभ जब सारे यदुवंश का नाश हो गया, तब वे मथुरा उनको ले जाया गया। अर्जुन के सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो बचे हुए वंशज थे उनको मथुरा ले गए, और वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। अभी उस समय वज्रनाभ एक छोटा सा बालक था, बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना करता था, और अब जब वो बड़ा हो गया तो उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने सबसे पूछा, मुझे भगवान का दर्शन करना है, उनकी सेवा करनी है, कृपया करके बताइए कि कैसे मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। तो ये सुनकर उनके जो गुरु थे जिनका नाम था शांडिल्य ऋषि, उन्होंने कहा कि भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता, भगवान और भगवान के विग्रहों में कोई अंतर नहीं होता, वो दोनों एक ही है। तो यदि आप विग्रहों की पूजा करोगे तो ये भगवान कृष्ण की ही पूजा करने समान है। अभी देखिए, मैंने यहां पे विग्रह शब्द इस्तेमाल किया। विग्रह मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? विग्रह किसे कहते हैं? मूर्ति को कहते हैं। यहाँ पे भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो वह भगवान के विग्रह है, लेकिन हम मूर्ति भी तो कह सकते हैं, लेकिन मैंने मूर्ति शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने विग्रह शब्दों का इस्तेमाल किया। तो देखिए दोनों में अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के बता दूं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा मना है। हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता, हिंदू धर्म में हर कोई व्यक्ति विग्रहों की पूजा करता है। अभी दोनों में क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति के लिए दोनों सेम ही लगेगा, लेकिन मूर्ति जो होती है वो पत्थर से बनी होती है। अगर ऐसी बात होती तो हम हर पत्थर की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम हर पत्थर की पूजा करते हैं क्या? नहीं करते। हम केवल उसी मूर्ति की पूजा करते हैं जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापना होती है। अब ये प्राण प्रतिष्ठापना करने की एक अलग विधि होती है। पत्थर से मूर्ति तराशने के पश्चात जब उसे मंदिर में स्थापित किया जाना होता है तो किसी महान संत या किसी पुरोहित के मार्गदर्शन में या भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान के उस मूर्ति में वो भक्त भगवान को आवाहन देते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, कृपया करके इस मूर्ति में आप उपस्थित होइए जिसके कारण हम आपकी सेवा पूजा कर सके, आप हमारी सेवा पूजा स्वीकार कर सके, इसलिए कृपया करके इस मूर्ति में आप उपस्थित होइए। तो इसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठापना। और जब ये विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठापना हो जाती है तब जाकर वह मूर्ति विग्रह बनता है। और इसीलिए हिंदू समाज में हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम विग्रहों की पूजा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, हमें समझना होगा। तो विग्रहों की उपासना हम करते हैं। अब ये विग्रह क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए मूर्ति जो है वो इनएक्टिव होती है, पैसिव होती है, और विग्रह जो होता है वो एक्टिव होता है। प्रिंसिपल मतलब कि अगर आप मूर्ति के सामने प्रार्थना करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप विग्रहों के सामने प्रार्थना करोगे तो भगवान अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करेंगे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी, हमारे हिंदू धर्म में लोग विग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मंदिर में इतना गंदगी होता है, इतना कचरा होता है। एक बहुत बड़े समाज सुधारक होकर गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वे कहते थे कि ये कैसा भगवान है जो अपने ऊपर घूमने वाले कॉकरोच चींटियों को हिला नहीं सकता, वो अपने भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करेगा, अपने बच्चों का अपने भक्तों का रक्षण कैसे करेगा। कभी कभी मंदिर में इतने बड़े बड़े चूहे घूमते हुए दिखाई देंगे आपको। तो कुछ नास्तिक लोग होते, उनको बहाना चाहिए होता है, वो कहते हैं कि देखो कैसे भगवान है, इन चूहों से अपना रक्षण नहीं कर सकते तो अपने भक्तों का कैसे रक्षण करते हो के? तो समझना होगा कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की प्रार्थना से उस मूर्ति में उपस्थित है। जब तक वो भक्त भगवान की पूजा अर्चा में लगा हुआ है तब तक ही भगवान उस विग्रह में उपस्थित रहते हैं, अन्यथा वो विग्रह छोड़ के चले जाते हैं। कई बार हमारे भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ था और उन विदेशियों ने हमारे यहाँ के बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ दिया था। आपने पता है, सबको मालूम होगा ये सब चीजें। तो कई लोग सवाल पूछते हैं कि अगर सच में ये जो मूर्ति है ये भगवान है, भगवान में और मूर्ति विग्रहों में कोई अंतर नहीं है, तो क्यों भगवान अपने मंदिर का रक्षा नहीं कर सकते, क्यों विग्रह जो है अपना स्वयं का रक्षा नहीं कर सकते इन लोगों से? तो उनके लिए सिंपल सा जवाब है कि भगवान अवश्य ही अपनी रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन भगवान उसमें विराजमान तो होने चाहिए। और विग्रह में कब तक भगवान विराजमान होते हैं? जब तक उनके शुद्ध भक्त उनकी प्रामाणिक सेवा अर्चा में लगे हुए हैं, तब तक ही उस मूर्ति में भगवान विराजमान रहते हैं। अन्यथा भगवान बोलते कि अगर कोई मुझे पूजा करने वाला है ही नहीं यहां पर, मेरा कोई भक्त मेरा ध्यान रखने के लिए यहां पर नहीं है, तो मैं क्यों यहां पर रहूं। तो फिर वह जो विग्रह है बाद में मूर्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसा हमने अंतर बताया आपको, मूर्ति और विग्रह में क्या अंतर है, विग्रह में जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापना होती है तब उसे विग्रह कहते हैं। हरे कृष्णा, आगे बढ़ू, थैंक यू। तो लोगों का सवाल होता है कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, भगवान अपना रक्षा क्यों नहीं करते। तो हमें समझना होगा, जब तक हम वृंदावन बिहारी की प्रामाणिक सेवा करेंगे तब तक भगवान इस विग्रह में उपस्थित रहेंगे। लेकिन जिस समय हमने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना बंद कर दिया, उस समय वृंदावन बिहारी जी इस विग्रह में या इस मूर्ति में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और फिर मंदिर का तथा उस जगह का पतन चालू हो जाता है। यही हमने हमारे हिंदू समाज में देखा है। जब कोई व्यक्ति मंदिर का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, मंदिर का उपयोग स्वयं के तिजोरी भरने के लिए जब करना चालू कर दिया, तो भगवान उस मंदिर में कभी भी उपस्थित नहीं रहे। और इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे मंदिर आगे चल के उनका नाश हुआ, ऐसे मंदिर तोड़े गए बाद में। तो ये हमने देखा है, ऐसे होता भी है। तो ये मत सोचिए कि भगवान और विग्रहों में कोई अंतर है, नहीं, विग्रहों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो वज्रनाभ जी ने प्रश्न पूछा था कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो शांडिल्य ऋषि ने जवाब दिया कि भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो आप भगवान के विग्रहों की स्थापना करें। तो टोटल 14 या 16 विग्रहों की निर्मिति की गई वज्रनाभ के कार्यकाल में। टोटल 14 या फिर 16, कुछ लोग कहते 14, कुछ लोग कहते 16, एनीवे वो जरूरी नहीं है। तो विग्रहों की निर्मिति की गई और वृंदावन के जितने भी प्रमुख लीला स्थली है वहां पर भगवान की स्थापना की गई। और स्थापना होने के पहले की बात है, वज्रनाभ जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, हमने इतने सारे विग्रह तो बना दिए हैं, लेकिन इन सब विग्रहों में से भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता विग्रह किसका है? है ना, कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि इतने सारे हमारे सुंदर सुंदर विग्रह है इस्कॉन मंदिर में, कोई तो एक विग्रह होगा जो कृष्ण से मिलता जुलता होगा। अगर ये पता चल जाए कि कृष्ण इनके जैसे दिखते हैं तो कितना अच्छा होगा। तो वज्रनाभ के भी मन में प्रश्न है कि इतने सारे विग्रह हमने बनाए, लेकिन इन सब विग्रहों में कृष्ण से मिलता जुलता विग्रह कौन सा है? तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में देखा हुआ केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित था और वे थी माता उत्तरा। उत्तरा ये अभिमन्यु की पत्नी है और महाराज परीक्षित की माता है। वो तब तक बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और केवल वही थी जिन्होंने कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में देखा था। तो उनको बुलाया गया, वे वहां पर आई और वज्रनाभ जी ने माता उत्तरा से पूछा कि कृपया करके बताइए कि इन विग्रहों में से कृष्ण से मिलता जुलता विग्रह कौन सा है? तो माता उत्तरा ने कहा, एक भी नहीं। क्योंकि माता उत्तरा कह रही थी कि कृष्ण जैसा मिलता जुलता विग्रह कैसे बन सकता है, कृष्ण यूनिक है। तो बेचारे वज्रनाभ उदास हो गए। उनकी उदासी देखकर माता उत्तरा ने कहा कि चिंता मत करो, इनमें से कुछ विग्रह जो है उनके अंग कृष्ण से बहुत मिलते हैं, कृष्ण से बहुत मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो एक विग्रह है इन विग्रह का चरण पैर जो है भगवान कृष्ण से 100% मैच करता है। अभी 100% मैच करता है मतलब उनके चरण का दर्शन करना ही भगवान के चरणों का दर्शन करने जैसा है। तो उस समय उनके उस विग्रह का नाम रखा गया राधा मदन मोहन जी। जिन मदन मोहन जी का दर्शन आप करेंगे या करते हो, तो हम रोज दर्शन तो करते हैं, लेकिन अभी हमने ये कथा सुनी, अभी पता चला, अच्छा मदन मोहन जी के चरण साक्षात कृष्ण के चरणों से मिलते जुलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी हम दर्शन के लिए जाएंगे, किधर दर्शन होगा, क्या देखेंगे, हम चरणों की तरफ देखेंगे। तो अभी तक हमने दर्शन तो किया था, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान नहीं था, तो हमने क्या किया, बस हाथ जोड़ लिए, सुंदर भगवान का श्रृंगार देख लिया और निकल गए। लेकिन जब हमने ये कथा सुनी, कथा सुनने के बाद अभी हमें रियलाइज हो रहा है कि अभी भगवान को कैसे देखना है, तो अभी हम चरणों का दर्शन करते हैं। और ध्यान में रखते हैं कि इनके चरणों का दर्शन करना मतलब भगवान कृष्ण के चरणों का दर्शन करने जैसा है। तो इसी को कहते हैं दर्शन करना, क्योंकि आंखों से केवल हम देखते हैं, लेकिन कानों से वास्तविक देखते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दर्शन आंखों से नहीं होता, दर्शन कानों से होता है। क्योंकि ये जो कान से जब हम सुनते हैं, तब जाकर उन विग्रहों का ग्लोरीज या महानता में समझ में आती है, नहीं तो केवल वो मूर्ति है, पत्थर की जैसी मूर्ति हमें दिखाई देती है। तो ये जो कथा है, ये कथा सुननी चाहिए। इसलिए हम जब भी किसी धाम में जाते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो केवल पर्यटन करने के लिए नहीं जाना है। लोग कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा गए थे, लेकिन वो सच में तीर्थ यात्रा थी कि पर्यटन यात्रा थी, तीर्थाटन था या पर्यटन था, वो हमें सोचना होगा। तो हमें तीर्थ यात्रा करना है, पर्यटन करने नहीं जाना है। और तीर्थ यात्रा करना है तो किसी भक्त के सानिध्य में जाइए, क्योंकि जब कोई भक्त आपको इस तीर्थस्थल के बारे में बताएगा, तब जाकर आपको उसका ज्ञान हो पाएगा, तब जाकर आप उस धाम को देख पाएंगे, अन्यथा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा हमें। तो ये जरूरत है दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करना है, भगवान को देखना है, तो कानों से पहले सुनना पड़ेगा। बिना सुने हम भगवान को नहीं देख सकते, और सुनना भी है तो भगवान के भक्तों के द्वारा सुनना है। तो इसलिए जब आप भगवान का दर्शन कर रहे हो मंदिर में, तो जान लो पहले ये है कौन। कुछ लोग आते हैं यहां पर मंदिर के परिक्रमा करते हैं, उनको लगता है अरे बहुत अच्छा सुंदर सुंदर कार्टून बना के रखा है। कुछ लोग कहते हैं, एक छोटा बच्चा पूछने लगा, अंकल ये कार्टून कौन है? तो मैंने बोला, हाँ बेटा ये कार्टून ही है, क्योंकि तुम एक कार्टून हो। और माता पिता भी हंस रहे थे, देखो मेरा बच्चा कितना बुद्धिमान है, कार्टून बोल रहा है। तो जैसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बच्चे वैसे ही तो बोलेंगे। कल एक प्रभु जी बता रहे थे, जो अंदर रहेगा वही बाहर आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीवन भर जो आपने सुना वही आपके संस्कार में दिखाई पड़ता है। और आजकल कई लोगों का, जब हम प्रवचन करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, तो माता पिताओं का हमेशा यही चिंता रहता है कि हमारे बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं, हमारे बच्चे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, प्रभु जी कुछ करो, हमारे बच्चों को सुधारो। आजकल बच्चों को भगवान की पूजा करने की इच्छा ही नहीं होती, मंदिर में आने की बात करते हैं तो बोलते हैं कहाँ लेके जा रहे, इससे अच्छा तो हम मूवीज देखने चले जाते हैं। तो कुछ करिए उनके लिए। हमने कहा बात सही है, जीवन भर जो उनके अंदर आपने भरा वही तो निकल रहा है भी बाहर। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो जीवन भर उनमें परवरिश में हम करते हैं वही बाहर निकलता है। तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है, माता पिताओं ने कभी इसको गंभीरता से लिया नहीं, और अभी बच्चे बड़े होने के बाद अपने संस्कार दिखा रहे हैं तो माता पिता चिंता कर रहे हैं कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। तो ये है मानसिकता, बच्चों को पहले से अगर ये संस्कार देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वज्रनाभ जी ने को पता चला कि ये जो मूर्ति है मदन मोहन जी की, इस मूर्ति का चरण साक्षात कृष्ण से मिलता है। फिर दूसरी मूर्ति की तरफ माता उत्तरा ने देखा, और उस मूर्ति को देखने के बाद माता उत्तरा ने कहा कि ये जो मूर्ति है इसका वक्षस्थल मतलब गले से नीचे और कमर का ऊपर का जो पार्ट है, उनके जो हाथ है, ये जो सारा जो पार्ट है बॉडी का, ये कृष्ण से बहुत मिलता है। और तब उस विग्रह के नाम रखेंगे राधा गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी के विग्रह जो है उनका जो टॉर्सो पार्ट है वो भगवान कृष्ण से बहुत मिलता जुलता है। तो गोपीनाथ जी का दर्शन करने से हमें भगवान के वक्षस्थल का दर्शन होने का लाभ मिलता है। फिर एक तीसरी मूर्ति देखी, तीसरी मूर्ति का दर्शन करने के बाद माता उत्तरा ने कहा ये जो विग्रह है इन विग्रह का चेहरा जो है कृष्ण से ऑलमोस्ट मैच करता है, और उनका नाम रखा गया राधा गोविंद जी। तो भगवान गोविंद जी का चेहरा, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और मदन मोहन जी के चरण, जब वृंदावन में जाकर हम इन तीन विग्रहों का दर्शन करते हैं तो हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन होते हैं। तो हमें ये जानना होगा, हम में से कई लोग वृंदावन कई बार गए होंगे। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम वृंदावन गए थे, हम मथुरा के रहने वाले हैं। हम बोलते तो बहुत मतलब अभिमान है, होना चाहिए, अच्छा है। तो मैंने बहुत सारे फिर प्रश्न पूछे कि आप मथुरा के रहने वाले हैं, कृपया करके बताइए कौन से प्रमुख विग्रह है वृंदावन के। तो सब लोग कहते बाके बिहारी जी। मैंने कहा हाँ बाके बिहारी जी प्रमुख है, लेकिन उनसे पहले भी कुछ विग्रह उपस्थित थे वहां पर, उनका नाम बताइए। बोलते प्रभु जी वो तो पता नहीं, हमें तो बस वृंदावन मतलब बाके बिहारी जी इतना ही पता है, और अंग्रेज मंदिर दूसरा पता है। अंग्रेज मंदिर मतलब इस्कॉन मंदिर, वृंदावन के कई लोग इस्कॉन मंदिर को अंग्रेज मंदिर कहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे अंग्रेज आते रहते हैं इसलिए। तो जब तक ये नॉलेज नहीं होगा हमें, जब तक हम सुनेंगे नहीं वृंदावन की महानता को, तब तक हम केवल बाहरी आडंबर जिसे कहते हैं, बाहरी जो ग्लैमर है, झगमगाट जो है, उसकी तरफ देखकर आकर्षित होंगे और हमें लगेगा कि यही वृंदावन है। लेकिन वृंदावन ये नहीं है, वृंदावन जो है ये भक्तों के हृदय में बसता है, और जब तक भक्त स्वयं अपने मुखों से उस वृंदावन की कथा नहीं करते तब तक हम वृंदावन को नहीं देख सकते। इसलिए हमें अगर भगवान का दर्शन करना है या तीर्थस्थल का दर्शन करना है तो दर्शन करने के लिए हमें कानों से पहले श्रवण करना होगा, तब जाकर हम धाम के बारे में या भगवान के बारे में समझ सकेंगे। समझ में आ रहा है? तो भगवान का दर्शन करना है मतलब क्या करना है? भगवान के बारे में सुनना है। नहीं तो केवल हम आंखों का एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी इस मंदिर के बारे में बताते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं जो भी यहां पर नए आए हैं, हमने इस मंदिर के परिघ में मतलब मंदिर के पेरिफेरी में अलग अलग भगवान की लीलाओं का प्रस्तुतीकरण किया है। यहां पर दो लेयर है, ऊपर वाले लेयर में श्रीमद् भागवत की कथा का डिपिक्शन किया है, प्रस्तुतीकरण किया है, और नीचे वाला जो लेयर है वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रस्तुतीकरण किया है। तो जो व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता है तो दर्शन करने का मतलब है भगवान की लीलाओं को समझना या जानना। इसलिए इस्कॉन मंदिर की खासियत है कि हमारे मंदिर में कहीं पर आपको घंटी नहीं दिखाई देंगी। कई बार लोग प्रश्न पूछते कि प्रभु जी आपके मंदिर में घंटी क्यों नहीं होती, आपके मंदिर के सामने कोई ऐसे फूल वाले नारियल वाले क्यों नहीं बैठते, उनका भी रोजगार हो जाएगा, उनका भी घर चलेगा, आप ऐसा क्यों नहीं करते। आपके मंदिर के बाहर अलग अलग मार्केटिंग स्टॉल्स क्यों नहीं होते, जैसे हर मंदिर के सामने होती है, तो ऐसा बनाया करो। मंदिर एक बहुत बढ़िया आमदनी का जरिया है। देखो लोगों की मानसिकता कहाँ कहाँ तक जाती है, मंदिर ना हुआ ऑक्यूपेशन हो गया। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मंदिर के कारण ही कई लोगों को रोजगार मिलता है, मंदिर के कारण ही कई लोगों के घर चलते हैं, लेकिन लोगों के घर चलाना ये मंदिर का कार्य नहीं है। लोगों को रोजगार देना ये मंदिर का कार्य नहीं, मंदिर का कार्य है कि लोग वहां पर आए और भगवान के बारे में जाने और सुने। और इसीलिए इस मंदिर में जो ट्रेडिशनल मंदिर में देखा जाता है वो कुछ भी यहां पर नहीं है। यहां पर भगवान है और साथ में भगवान के भक्त आपको दिखाई पड़ेंगे। महत्वपूर्ण होता है श्रवण करना, भगवान के बारे में जानना। इसलिए इस्कॉन के मंदिर में आपको कथा प्रवचन चलते हुए दिखाई पड़ेगा। अन्य किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पे कथा प्रवचन नहीं होता, कृष्ण की कथा नहीं होती, लेकिन इस्कॉन मंदिर में हर रोज सुबह भगवान का दर्शन करने के पश्चात वहां पर भागवत की कथा होती है, आरती होता है, कीर्तन होता है। यही तो मंदिर का कार्य है। नहीं तो बहुत दुख होता है जब मंदिर बहुत धूमधाम से मंदिर का निर्माण तो किया जाता है लेकिन मंदिर को बाद में ग्रिल वाला दरवाजा लगा के ताला लगा देते उसको। शायद आपने नोटिस भी किया होगा, मंदिर बहुत बड़ा है लेकिन मंदिर के दरवाजा जो है वो ग्रिल से बना होकर उसको ताला लगा देते हैं और फिर मंदिर में कोई रहता ही नहीं, कुत्ते घूमते रहते हैं वहां पर, फिर मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रांगण में, कहीं कहीं पे तो कबूतर होते हैं, कबूतर की गंदगी पड़ी रहती है पूरे मंदिर के अंदर। और फिर लोग कहते हैं कि ये क्या ये मंदिर है, मंदिर ऐसा होता है। नहीं, मंदिर ऐसा होता ही नहीं है। ये आजकल की अवस्था बन चुकी है क्योंकि लोग मंदिर को आमदनी का जरिया बना बैठे हैं, और जब आमदनी होगी तो मंदिर खुलेगा, आमदनी नहीं हो रही तो मंदिर को ताला लगा के बैठ जाएंगे। तो इस वजह से हमें हमारी जो संस्कृति है उसे बचाना है। और जब ऐसे ही मंदिरों पर आक्रमण होते हैं, लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में डालने वाले बाहर के लोग नहीं है, हिंदू धर्म को खतरे में डालने वाले हम जैसे ही लोग हैं जो मंदिर केवल कान पकड़ने के लिए, उठक बैठक करने के लिए या केवल फोटो सेल्फी निकालने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों से वास्तविक तौर पर मंदिर या वैदिक संस्कृति को खतरा है। तो कृपया करके मंदिर में जाएं तो मंदिर में भगवान की कथा सुने, वहां पर भक्तों से मिले, आध्यात्म की जिज्ञासा करें, वो जरूरी होता है। लोग कहते कि अरे मंदिर में केवल बूढ़े लोग जाने चाहिए, उनके उनको करने के लिए कुछ काम तो होता नहीं है। तो हम देखते भी है कुछ सीनियर सिटीजन्स, बूढ़ा बोलना बुरा बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो जो सीनियर सिटीजन्स है वो क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं अपने पोते पोतियों के साथ और वहां पर बच्चों को बोलते कि बेटा चलो पूजा प्रणाम करो, तो छोटा बच्चा प्रणाम करता है। नाना नानी को बहुत प्रसन्नता होती है कि देखो मेरा पोता कितना आज्ञाकारी है, संस्कारी है। फिर बाद में कुछ नाना नानी उन्हें संस्कृत श्लोक भी सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए, लेकिन ये सब केवल पोते पोतियों के लिए। खुद के लिए पूछे तो हमको मत बोलो, हमको सब पता है। प्रभु जी जब मैं भी छोटा था ना, 15वां अध्याय पूरा याद था मुझे, अभी बोल के दिखाओ। अभी बूढ़ा हो गया, याद नहीं रहता कुछ भी, और हाथ में तंबाकू लेके घुटते रहते मंदिर में भी। तो ये है आजकल का जनरेशन। तो बताइए कैसे होगा, कैसे हमारी संस्कृति सही हाथों में जाएगी? ये हमारे ही हाथों में है, बच्चों का दोष नहीं है, ये दोष माता पिताओं का है जो अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिलाते। उन्हें लगता है बुढ़ापे में करेंगे। बच्चों में संस्कार बचपन से होने चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान बचपन से देना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। अगर हमारे बच्चों के बर्ताव से कुछ गंदगी बाहर निकल रही है तो समझ लेना चाहिए कि माता पिताओं ने वही गंदगी उनमें स्वयं डाली थी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मुलायम मिट्टी के समान होते हैं, जो जिसको आकार देकर उसका उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर माता पिता ही अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, किसका दोष है? बाद में लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे आजकल सारा दिन मोबाइल में ही ध्यान रखे रहते हैं। तो इस वजह से मंदिर लाना चाहिए, मंदिर में भक्तों का संग दिलाना चाहिए। भक्तों के संगति में रहेंगे तब बच्चों में परिवर्तन आएगा। हम श्रीमद् भागवत से भी एक कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि की कथा आती है। पिछले जन्म में नारद मुनि भी एक 5 साल के बालक थे, 5 साल के छोटे से बच्चे थे। चातुर्मास का समय था, चातुर्मास मतलब ऐसा ही रेनी सीजन था। तो कुछ साधु संत वहां से गुजर रहे थे और चातुर्मास होने के कारण वे वहीं पर रुक गए, उसी गांव में जहां पर नारद मुनि का घर था। तो 5 वर्ष का बालक नारद मुनि इन साधु संतों की सेवा में लग जाता था। उनकी माता खाना बनाती थी तो ये बालक इन साधु संतों को जाकर प्रसाद देता था, सेवा करता था अलग अलग प्रकार की। और इस सेवा वृत्ति से, साधुओं की सेवा करने से, नारद मुनि के हृदय में भक्ति का संचार हुआ और इतना वो प्रभाव पड़ा कि आगे चल के वे नारद मुनि बने। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों में परिवर्तन अपने आप नहीं होता। बच्चों में परिवर्तन ऐसा हो जाए कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा सब कुछ, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चों को ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। आप बोलेंगे प्रभु जी आपने शादी की है जो इतना पेरेंटिंग पे वो सेमिनार दे रहे हैं? नहीं, हमने हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जो देखते हैं आजू बाजू, और जब माता पिता हमारे पास आते हैं कि प्रभु जी हमारे बच्चों के लिए कुछ करो, हमें डर लग रहा है कि अभी ऐसा बर्ताव कर रहे तो हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तो जब हम उनसे सुनते हैं, ऐसे माता पिताओं से हम सुनते हैं, तब हमें बताना पड़ता है कि भाई ये समय है बच्चों में परिवर्तन लाने का। तो ये संस्कार, ये संस्कृति हमसे शुरू होती है, और अगर हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर किसको दोष देना, क्यों दोष देने का दूसरों को? आगे चल के भगवान को बोलते हैं, भगवान मैंने हर रोज तुम्हारी पूजा की, बदले में तुमने क्या दिया? वृद्धाश्रम दे दिया क्या, इसीलिए तुम्हारी पूजा की थी? ऐसे भी डायलॉग मारने से बाज नहीं आते लोग। तो भगवान का दर्शन जो है वो केवल औपचारिकता नहीं है। हम हिंदू है चलो मंदिर जाते हैं, ये मत सोचिए। मंदिर में जाने का मुख्य पार्ट है सुनना, श्रवण करना। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे हम केवल पत्थर की ही मूर्ति देखेंगे और कुछ दिखाई नहीं देगा हमको। तो कृपया करके मंदिर में जाइए और वहां पर किसी साधु का संग कीजिए, किसी साधु से पूछिए कि जीवन का ध्येय क्या है, मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे ला सकता हूं, ये जिज्ञासा करना चाहिए। जब ये कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है तब सही मायने में उसका मंदिर जाने का कार्य सफल हो पाता है, अन्यथा ये पर्यटन के अलावा और कुछ नहीं बनेगा हमारे लिए। हम अलग अलग हिल स्टेशन पर्यटन जाते हैं तो ये एक दूसरा पर्यटन हो जाएगा। वहां पे इंद्र तृप्ति करने वाले लोग पर्यटन करते हैं, यहां पर धार्मिक लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं। बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं बचेगा। तो इस शिक्षाओं को स्वीकार करें, जानने का प्रयत्न करें, यही आज मुझे आपको कहना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आने के लिए आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद। जो भक्त पहली बार आज इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं, उनका हम विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे। तो हम आप सभी से विनती करते हैं, जो भक्त पहली बार आज आए हैं इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में, वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्रील प्रभुपाद और वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन, जो रविवार, फर्स्ट रविवार आप संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं, यह आपके आध्यात्मिक जीवन की अच्छी शुरुआत बने और हर रविवार को आप इस कार्यक्रम में आकर हमारा उत्साह बढ़ाए। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय के बीच में यहाँ पे रविवारी सत्संग कार्यक्रम होता है। उसके साथ ही साथ कल से झूलन यात्रा शुरू हो रही है। रोज शाम को 5 से 7 बजे तक यहाँ पे भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का झूलन रहेगा, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। 12 तारीख को शाम को बलराम जयंती का महोत्सव रहेगा। उसके पश्चात 18 और 19 तारीख को जन्माष्टमी महामहोत्सव हम मनाने वाले हैं, उसी की तैयारियां चल रही है। तो 18 और 19 तारीख को शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक, विशेष रूप से 19 तारीख को जन्माष्टमी महामहोत्सव हम मनाने वाले हैं। तो अपनी कैलेंडर में डेट मार्क कर लीजिए और 18 और 19 तारीख को जन्माष्टमी महोत्सव में भी आकर अपना भक्ति का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे विनती करते हैं कि हर बार इस कार्यक्रम में आइए। जाने से पहले आप सभी को कूपन मिला होगा, तो लंच प्रसादम है। विशेष रूप में जिन भक्तों को कूपन मिला है उनके लिए अलग से काउंटर लगाया हुआ है। 12:30 बजे महाआरती के बाद ललिता भवन में महाप्रसाद की व्यवस्था है, जाते समय प्रसाद लेते हुए जाइए। हरे कृष्णा। अभी अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। इसके पश्चात श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, उसमें सभी भक्त डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सामने आके भी दर्शन ले सकते हैं।